कबीर साकत संग न कीजिए दूर हो जाइए पाग, बसन कारो परसिए तो कुछ लागे दाग। पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते न काम, मिल सत्संग भज केवल नाम। गुरमुख वै सुकाया को जय, हो सब परम पुलाई।
आज देश रूहानी शासन ने गुरु साहबा ने जो शब्द बख्शिश किया है वो है मिलन। ये मिलन शब्द की है इस संसार दे विच, क्या जड़ क्या चेतन, जिसले एक वस्तु दूसरी वस्तु दे विच थोड़ी या अधिक मात्रा दे विच समांदी है उसनु असी मिलना कहंदे हां। इस सृष्टि दे विच पांच तत्व और तीन गुण इन्हां दी जमा घटा करके इस सृष्टि दी रचना कीती गई है और यह सृष्टि इतनी विशाल है कि इसनु असी गिनती दे राही जान नहीं सकते। उस परमात्मा ने अनगिनत ब्रह्मांड जो हैं रचे हैं और यह सारी रचना रच करके इसनु चलाने लई बहुत सारी ईश्वरी ताकत दे करके काल पुरुष और सत पुरुष दे अधीन इसनु सौंप रख्या है। सब तो पहला उस अनामी ने, उस अनंत ने, उस अलख ने, उस आगामी ने जो अपने आप दे विच लीन है, अपनी मौज दे विच मस्त है। जदों अहंकारा भरिया एक आवाज होई, वो आवाज ओम नाल मिलदी जुलदी सी। इस आवाज दे नाल इस सृष्टि की रचना की गई। इस आवाज नूं असी शब्दा दे राही या होर किसी भी भाषा दे राही या शरीर दे किसी अंग दे राही जान नहीं सकते। इस नूं असी सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उस समुंदर की बूंद है, उस नूं असी कठा करके सिर्फ महसूस कर सकते हाँ। तो सब तो पहला इस आवाज तो सतपुरुष की गणना की गई। सतपुरुष की एक नकल बनाई गई जिसनु असी काल पुरुष कहते हैं। असल सत है, नकल काल है। सत का जो लोक है वैसे तो सारे ही ब्रह्मांड जड़े ने वह सत के अधीन हैं, पर वह भी अपनी मौज के विच मस्त है। उसने सारी जो समर्था ताकत दे करके काल पुरुष नू इन त्रिलोकी दे राज दा कारी बनाया है। इस दे विच जानन वाली गल यह है कि उस काल पुरुष ने उस अनामी तो इस रचना नू चलाण लई तीन वार लए हैं। पहला वार यह है कि कर्म का जो नियम है किसी भी जीवात्मा नू अपने कर्मा का ज्ञान ना रवे। दूसरा इस जीवात्मा नू जिस भी चोले दे अंदर मैं रोका वो आत्मा उथे प्रसन्न रवे। तीसरा कि संत सतगुरु जो आंदे हन क्यों, क्योंकि कुछ जीवात्मा ने एतराज किया सी इन्हां लोकां दे भी जान वास्ते। उस वेले उस अनामी ने यह वर दिता सी कि अगर तुसी विछड़ना नहीं चाहते, इस सहज अवस्था तो अलग होना नहीं चाहते, इन भोग विलास की अवस्था दे विच लीन नहीं होना चाहते, असी तुहानू आवाज मारांगे। तुसी उस आवाज नूं सुन करके उहदे पिछे चल करके वापस साडे विच आ करके समा जाओगे। सो ओ आवाज जो है जिसनूं असी परमात्मा की आवाज कहंदे हां वो एक जोत स्वरूप है। तो इसी करके इन जीवात्मा नूं प्रमाण लई रोकण लई काल ने जो तीसरा वार लिया वो यह सी कि जदों भी संत आण वो अपनी समर्था या ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये तीन वार लेकर के उस काल पुरुष ने तीन लोक, एक लोक ते जड़ है यानी कि स्थूल लोक जिसनों असी मात लोक भी कहते हाँ जिथे असी इस वक्त बैठे हुए हाँ, दूसरा है सूक्ष्म लोक, तीसरा है कारण लोक। ये तिना का स्वामी वो काल पुरुष ताकत लै रहा है सत पुरुष को और नियम है आवागमन का 84 लाख पिंजरे बनाए ने और उन्होंने कर्मा का जो है कानून बना करके उसने इस जीवात्मा एटोमैटिक तरीके दे नाल इदे विच रोक रखा है। वो एक थानेदार है, उन्हों दोष देने का कोई लाभ नहीं। जिस तरह असी इस मुल्क दे विच देखते हाँ एक थाना बनाया जाता है तो थानेदार को डर किसनू लगता है? जड़ा चोरी करता है, झूठ बोलता है, गलत कर्म करता है वह हमेशा थानेदार को दूर होकर के लंघेगा। क्यों? क्योंकि उसनू अपने कर्मा का डर है। किस करके? कि इस थानेदार ने इस कर्मा की मैनू सजा देनी है। उसे तरीके दे नाल काल ने जो ये रचना रची है ये सिर्फ 84 लाख पिंजरिया की रची है। जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है, निश्चित अटल और अविनाशी है। इस दे उपर काल का प्रभाव नहीं है। काल जो है तिना लोका तो बाद यानी महाकारण तो अगे जिथो सचखंड शुरू है अविनाशी है उदे विच प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि इस जीवात्मा के उपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। काल का प्रभाव सिर्फ अपने तिना लोगों के बनाई गई उसकी रचना उसके उपर है। उसके नाल ही वर भी दिता गया कि तेरी ये जो बनाई गई रचना है बेशक समर्था जो है वह सच दी है, सतपुरुष से लई गई है। सच कहने के बाद भी ये एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। इसे करके असी उसनू काल पुरुष भी कहते हाँ, त्रिलोकी नाथ भी कहते हाँ, धर्मराज भी कहते हाँ। क्यों? क्योंकि उन्हें साडे कर्मा अनुसार जो लेखा लिखा गया है उस दे अनुसार सानू चोला देना है और आवागमन दे विच परमण दे विच उसने सानू रखना है। इस दे विच जो कुछ भी जीवात्मा करती है यानी कि स्वाद किसने लगाए ने? जीवात्मा ने लगाए ने। पहला स्वाद उसने बिल्कुल फ्री दे तौर ते दिता पर उसका भुगतान करन लई जिसले उहदे कोल मुल मंगया गया ते उस दे अगे झूठे भांडे रख दिते गए। वह मांगण लगी तो उन्हें फिर भुख लग गई, फिर स्वाद लगाया, फिर स्वाद लगाया, फिर कर्म किते। यानी कि एक कर्म का भुगतान होंदा नहीं कि वह भुगतान करन दे विच वह अनगिनत ऐसे कर्म कर बैठती है कि जिसका भुगतान करन लई होर कई जन्मां दा उन्हू गेल जो है कटना पैंदा है। यह है इस काल की लीला जिस दे तरीके दे नाल उसने इस जीवात्मा नू इथे रोक रखा है। जो असली मजबून है मिलन का जो भाव है उस रूहानियत दे विच की अर्थ रखता है वह है आत्मा दा परमात्मा दे नाल मिलन। और यह मिलन तद ही संभव है, ता ही हो सकता है जदों इस रस्ते का कोई जानकार सानू मिले, कोई ऐसा गाइड मिले जिदे कोल पूरी समर्था होवे। यानी कि जो ताकत इस काल पुरुष दे कोल है उस कोल वध दी ताकत लै करके कोई सानू मार्गदर्शन दवे ता ही जा करके असी इस जीवात्मा नू आवागमन तो मुक्त करा सकते हैं। मुक्ति किसनू कहंदे ने? जदों जीवात्मा उस परमात्मा दे नाल मिल जाती है। उस दे मिलन तो पहले तक दे जितने भी मुकाम ने महाकारण दे देशां तक जितने भी जन्म ने सारे भोगी जूना दे विच 84 लाख जामे दे अंदर ने। इस तो असी विचार सकते हाँ, सारे वेद ग्रंथां नू पढ़ करके देख लो, संतां दी बाणियां नू पढ़ करके देख लो, सब दे विच इक्को ही गल कही गई है कि 84 लाख जामे दे विच अगर कोई मुक्ति का जामा है जिदे विच इस जीवात्मा नू सदा लई शांति प्राप्त हो सकती है, सदा लई सुखी हो सकती है, तो वह सिर्फ मनुखा जन्म है। और इस मनुखे जन्म दे विच आ करके असी कदे भी यह कोई उपराला नहीं करते, यह जानने की कोशिश नहीं करते कि असी सदा लई सुखी कदों और किस तरीके नाल हो सकते हैं। असी इस मन दे राही, मन कौन है? मन ब्रह्म दा अंश है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म उस काल दा बेटा है। यानी कि यह जो मन करिंदा है उस काल ने एक जसूस हर जीवात्मा दे नाल अंतर दे विच रखिया होया है। कोई भी भोगी जून चाहे वह देवी देवता ने, चाहे कारण जूना ने, चाहे सूक्ष्म जूना ने, या स्थूल लोक दे विच कोई भी चोला लेकर के जून बैठी है, यानी कि उसका करिंदा मन सूक्ष्म लोक विच है ते सूक्ष्म रूप दे विच कारण है ते कारण रूप दे विच। यानी कि इस जीवात्मा नू प्रमाण लई उस काल पुरुष ने इस करिंदे मन जसूस नू नाल बिठा रखिया है। और असी इथे ही भुल करते हाँ कि जड़ा भी किरत या कर्म करते हाँ इस मन दे हुक्म राही करते हाँ। और मन दे हुक्म राही यानी सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे विच सूक्ष्म रूप का की भाव है कि अगर एक अख दे नाल, एक जबान दे नाल, एक कान दे नाल, एक शरीर के किसी भी अंग दे नाल, इवन कि असी पानी भी पींदे हां, चलते फिरते भी हां, तो यह जीवात्मा जो है कर्म बनाती है। किस तरीके दे नाल अगर पानी का घुट भरिया तो उहदे च लखा ही ऐसे सूक्ष्म जीवाणु ने जिन्हों का हिसाब काल मंगदा है। हर श्वास जड़ा असी अंदर लैंदे हां कई करोड़ जीवाणु जो ने मौत दे घाट उतार दिते जांदे ने, यानी कि साह लैण दे नाल कर्म बन रहा है, पानी पीण नाल कर्म बन रहा है। ते विचार करके देखो क्या दो ढाई घंटे दे नाल ए कर्मां दा भुगतान हो जाएगा। अगर कोई चित्रगुप्त किथे मिल जावे ना उहदे कोल बैठ करके अपने सिर्फ एक दिन का 24 घंटे का हिसाब मंगना और उन्हूं अपने कीते गए कर्म दसना और उस तो बाद उन्हूं कहना भाई सानू रिजल्ट दस कि साडी रूह कित्थे तक चढ़ाई कर गई है। तो उस वेले जिसले वह चित्रगुप्त रिजल्ट देगा ना और रिजल्ट इतना भयानक होगा कि असी भुगतान दे 2-2.5 घंटे की करना है, कई गुणा ऐसा उधार असी कर दिता है जिदा भुगतान करने लई इस जीवात्मा नू कई करोड़ जन्म लेने पैणगे। इस तो तुसी विचार कर लो कि यह जीवात्मा दा आत्मा दे परमात्मा दे नाल मिलन दा जो मजबून है वह इतना सस्ता और आसान नहीं है कि अमृत दा बाटा तैयार किया है जी तुसी फलाने टाइम जा करके छक लो, हजूर पातशाह जी आए ने नाम देण वास्ते पर्ची कटा लो। कोई शक नहीं है कि डिग्री दे दिती है हजूर पातशाह जी ने, अमृत दी दात बख्श दिती गई है, क्यों कलगीधर पातशाह दा हुक्म है पूरन सतगुरु सन। पर उस तो बाद कदी असी ये विचार किया है कि असी पढ़ाई भी करनी है, क्या उस दे नाल जड़े सानू उपदेश दिते गए सन उन्हां दे विच कोई एक ऐसा उपदेश भी आया सी कि तुसी अमृत छकण दे बाद नाम लैण दे बाद किसे भी तरीके दा कर्म करो, किसे दा भी गला छोटा करो, किसे दा भी जेब हलका करो, सारा दिन काम दे विच ही लिप्त रहो। काम दी की परिभाषा सतगुरु देणगे, पशु और पक्षी जड़े ने इस मनुख कोलो कई गुणा अगे ने, किस तरीके दे नाल उन्हां दे मिलन दी एक रुत निश्चित कीती है प्रकृति ने। 12 महीने सिर्फ इको ही समा है जिसले बच्चा पैदा करन लई एक दूसरे दे नजदीक आंदे ने। और एक दो पैर वाले जानवर की तरफ देखो, जानवर क्यों लड़न की कोई जरूरत नहीं है, ये मजबूर है विचार करन दा। असी बेशक कहन नू इंसान हाँ पर हर रात सानू जो है मुंह काला करन लई तैयार बैठे हाँ, क्यों? क्योंकि असी मन दे एक विकार दे विच ग्रस्त हाँ। क्या ऐसा हजूर पातशाह जी ने हुक्म किया सी कि नाम लैण दे बाद तुसी कैसा भी कर्म करो गुरु दे हुक्म विच रहना है या मन दे विकारां दे अधीन कर्म करने ने? यानी कि कोई भी सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे विच भी कीता गया कर्म जड़ा मन दे हुक्म दे विच है, मन दी तरंग दे उत्पन्न करन दे विच असी उस दी अवसर पूरा करन लई कीता है, ते उस दा भुगतान नाल दे नाल ए जीवात्मा अपनी डे बुक आप लिखदी है। जिस नू चित्रगुप्त किया गया है वह मन है, वह मन ही ए लेखनी लिखदा है। किसी ने बाद बैठ करके कोई अदालत नहीं लगानी, कोई सिफारिश नहीं लगनी, कोई ऐसा उपराला नहीं होना कि उत्थे आ करके कोई सानू छुड़ा देगा या साडी जमानत देगा। उत्थे ते साडी गवाही किसने देनी है? इस मन ने देनी है कि इस जीवात्मा ने ए कर्म कीते ने और असी कर रहे हां मन दे हुक्म नाल ते बच रहे हां सतगुरु दी नजर तो। और एक पासे असी दावा करदे हां कि सतगुरां दा अमृत छक करके नाम लै करके वह साडे अंदर दे विच बैठ जांदे ने। ते विचार करके देखो अगर सानू यकीन है वह साडे अंतर दे विच बैठे ने ते फिर असी इतने गंदे कर्म नीचता दे पूरण ऐसियां भोग विलास दे विच कर्म किस तरीके दे नाल कर लैने आ? कौन सानू प्रेरित करदा है? इको ही प्रेरणा देंदा है मन। इसी करके बाणी विच कबीर जी ने कहा है साकत संग न कीजिए दूर जाइए भाग, वासन कारो परसिए ता कुछ लागे दाग। यानी के तुसी इस पैड़े संग तो दूर दौड़ जाओ, एक काले भांडे नू सिर्फ चुक करके असी दूसरी जगह ते रखिए ना ते उंगल काली हो जांदी है, सानू मल मल के धोनी पैंदी है। और ए जीवात्मा ने इस काले भांडे दा संग सदियां तो कीता है, जब तो ए सचखंड तो उतर के आई है इस मन दी संगत दे नाल इतनी मैली हो चुकी है कि अंदर परमात्मा मौजूद है, उसनु लभण लई ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁਨਕਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਜਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਵਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮਲ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਵਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ 16-16, 20-20 ਸਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੂਟਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਝੂਟਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੂਟੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੂਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਝੂਠੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਝੂਠਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਝੂਠੀ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋਤ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੂਪ ਪੁਨਕਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਜਨ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਚਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਣ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ 1, 2, 4 ਅਗਰ 36 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ 36 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਹਾ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਸੁੱਚੀ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਗਹਿਨ ਅੰਧਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਿਲਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? उन्हें कोई पूजा नहीं करानी, कोई धूप बत्ती नहीं दिलानी, कोई पत्थर पूजा नहीं करानी, कोई होर तीर्थां दा भ्रमण नहीं कराना। उन्हें तो सिर्फ सच का होका देना है, हक का नारा लगाना है। जिसने एक हक की आवाज नू पहचान लिया, अंधा बोला होकर के उसके पिछे चल पिया। अंधा क्यों? क्योंकि यह जीवात्मा अंधी है। चलना किसने है? मन तो चतुर है, वह तो इतना नीच है कि पिछे चलन ही नहीं देगा। अगर जीवात्मा जो है बेशक इस वक्त अन्नी बैठी है, अगर वह समाज के पिछे पिछे चल पाती है तो उसनू अंतर दे विच वह आवाज भी सुनाई दे जाती है। यानी कि वह मनमुख तो फिर गुरमुख बन जाता है। यानी कि इस मन नू काबू करन दा फिर की तरीका है? इको ही तरीका है। योगी तपी हजारा साल तप करके इस मन नू काबू च नहीं कर सके। एक मन का एक विकार है। रावण क्यों पतन दे विच गया? एक अभिमान आ गया। दुर्योधन का की असर होया? एक अभिमान आ गया। यानी कि एक विकार ने एक लख पूत सवा लख नाती इस रावण कर दिया ना बाती। यानी कि ओदे कर दिया बाती देन वाला भी कोई ना बचिया। इतना बाग परिवार होने के बाद वजह की सी? सिर्फ एक अभिमान हंकार आ गया उसके अंदर। सतगुरु उपदेश करते ने, कहते बेटा विचार करके देख, तू परमात्मा नु मिलन चलिया है, अपने अंदर झांक करके देख कितना झूठा है, कितने विकार तेरे अंदर गढ़ किते हुए ने, ऐसे ऐसे गहरियां नीयां इन्हां दियां विच व्याप्त ने, सदियां तो ही तू इन विकारा दे विच रत है, ऐसे ऐसे भयानक कर्म तू कर करके बैठा है कि अगर एक कर्म भी तेनू दे दिता जाए जिदा भुगतान करन वास्ते तेनू कई करोड़ होर जन्म लेने पैणगे। ते विचार करके देख तेरी मुक्ति किस तरह होएगी। तू इस जगत भी सुख लोड़ रहा है, इस जगत की हर वस्तु ने नष्ट हो जाना है। सब दी एक सीमा है, काल दी यह लीला है कि जो भी वस्तु इस जगत दे विच उत्पन्न करता है उसकी समय निश्चित हो जाता है। चाहे वह जड़ है यानी कि सूरज है, चंद है, तारे ने, या कि कोई भी भूमंडल है, या कोई भी चेतन चोला स्वरूप उसने दिता है जिस दे विच आत्मा नू कैद किया है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद उस सब वस्तुआ ने नष्ट हो जाना है। नष्ट होने की की वजह है? जो ताकत सच पुरुष तो काल पुरुष नू प्राप्त होती है उसकी भी एक सीमा है। निश्चित सीमा करके उसनू यह ताकत समर्था दिती है और एक नीमा दे अधीन एक खेड रचिया होया है। एक खेड चल रही है और सतगुरु उपदेश करते ने अगर तू मुक्ति प्राप्त करना चाहता है ना, आवागमन चो निकलना चाहता है, तो याद रखी कि नीमा दे अधीन ही तू निकल सकता है। किसी का पासपोर्ट ला करके किसी नू दिखांदा होएगा, ये चेक दिखाएगा ना जेड़े ब्लाइंड चेक ने, ते इना दिया डेटा तेरिया निकल चुकिया ने। ये चेक तू एक वेरी नहीं कई वेरी ले ने। जिसले तू नरकां दे विच बिखलांदा से ना, पिटदा से कर्म भोगदे होए, तेरी आवाज कोई नहीं सी सुनदा, उस वेले सतगुरां ने रहमत करके तेनू एक चेक दिता सी जिसनू असी नाम कीर्तन आवाज या कि शब्द कहंदे आ या अमृत कहंदे आ या होर कई लफ्जा दे नाल गुरबाणी याद करदे आ। ये सारे ब्लाइंड चेक तेनू दिते सन, ये कैश कराने वास्ते दिते सन तेनू। यानी कि मनुखा चोला दिता सी, इस चोले दे विच आ करके तू इस शब्द नू सार्थक करना सी, इस चोले नू सार्थक करना सी। इस देही को सिमरे देव, असी देवी देवत्या नू पूजन लगे आ। ये भी एक भोगी जूना ने, इना ने भी जिसले इना दी उम्र खत्म होनी है, भोग खत्म होने ने, अच्छे कर्म खत्म होने ने, इना ने फिर 84 दे गेड भी चाहना है। किशन जी ने गीता भी स्पष्ट किया है कि ये उदो ये जो कीड़ा देख रहे हो ये कई बार ऊंची गति यानी कि कई बार ब्रह्मा, कई बार विष्णु, कई बार शिव जैसी ऊंची गति प्राप्त कर चुका है। अब ये कर्मों के अधीन एक नंदी नाली का कीड़ा बना हुआ है। यानी कि अगर तू 84 दे गेड चो निकलना चाहता है तो अपनी मन बुद्धि मेरे में स्थित कर, अपने प्राण मेरे में स्थित कर, मेरे को ही हर जगह व्याप्त देख और मेरे अधीन किया हुआ कर्म और उसका फल मेरे को अर्पित कर, तभी तू निष्कामी होकर के इस आवागमन से मुक्त हो सकता है। तब तू किसी को मारता हुआ भी किसी को मारता नहीं, यानी कि तू उसके फल से मुक्त है। यानी कि तेरी जीवात्मा तभी मुक्त प्राप्त करेगी, तभी तू मेरे इस निज स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। इतना ज्ञान देने दे बाद भी एक मनुख अर्जुन जो कि खुद अवतार स्वरूप सी, वो किशन जी दे उपदेशां दे उपर पूरा नहीं उतरिया, उसने हथियार नहीं सी चुके। और उसके बाद की कीता सतगुरां ने, उस वेले उन्होंने अपने असली रूप यानी कि विराट रूप दे उसनु दर्शन कराए। यानी एक मनुख जो कि अवतार स्वरूप सी उसनु मनाण वास्ते उस परमात्मा ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ। ਤਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਕਿਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸਦਾ ਇਤਨਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਸ ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਇਸ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਫਰਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਤਨੇ ਚੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਰਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਕਾਲ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਤਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਲਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੀਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਛੂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ, ਇਤਨੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹੀ ਛੂਟ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਪਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਦਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਚ ਭੁਗਤਾ ਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਨ ਜੋ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅੰਧੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਗਮਨ 84 ਲੱਖ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਪਿੰਜਰੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਾਰਥ, ਹੇ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਿੰਨੋ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਹਾਂ, ਆਮੀ ਕਾਲਾਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਹੂੰ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਵਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਮ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਆਚਰਣ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਲੀਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੇ। अगर असी इन्हां ताकतां नूं भी प्राप्त करना चाहते हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण नूं प्राप्त करना चाहते हाँ, भगवान श्री राम नूं प्राप्त करना चाहते हाँ, तो याद रखना निंदा करके नहीं, सच्चे होकर के अपना वो करैक्टर ला करके, जो करैक्टर ला करके इस जगत विच आए सन। असी श्री रामचंद्र जी नूं की कहंदे हां, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के ही असी इस राम नूं प्राप्त कर सकते हां। किसी मूर्ति नूं भोग लगा करके या मत्था टेक करके असी इस संकार च बैठे हां कि असी श्री रामचंद्र जी नूं खुश कर रहे हां, ते साडा परम है। जो वेदा दे विच ज्ञान है वह ब्रह्म की बाणी का ज्ञान है, वह ब्रह्म की बाणी उ बाणी है जो सचखंड तो बाणी आई है। ये बाणी अलग अलग मंडलों के अलग अलग मंडलों के जो रूपरेखा बनाती हुई दसवें द्वार आ करके दिन रात तुनकारे दिंदी है। होर 84 लाख पिंजरों के असी इस आवाज नूं प्राप्त नहीं कर सकते। अगर असी मुक्ति चाहते हाँ, इस आवाज नूं मिलना चाहते हाँ जो सानू तुर दरगाह ले जाने वास्ते आई है, तो उहदे वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक मनुखा जन्म है, मनुखा चोला है। ये जीवात्मा अंधी और बोली है, इस करके अखां चाहीदियां ने। जिस तरह उस काल ने अपने 24 अवतार इस जगत विच भेजे अपनी आवागमन पक्का करन वास्ते, इस जीवात्मा नूं परमाण वास्ते, ये जितने भी अवतार सन ये जीवात्मा नूं परमा करके गए ने। परमाण दा की भाव है कि आवागमन दे कर्म करवाण वास्ते, यानी कि जो जगत दे मुतलक कर्म है या प्रीत है, मां दे मुतलक, प्यो दे मुतलक, तिया पुत्र जमीन जायदाद दे मुतलक, ये सारी प्रीत पक्की करके गए ने। और ये प्रीत पक्की करके आवागमन दे चोले पक्के करा करके गए ने। सो इसी मजमून नूं, इसी भ्रम नूं दूर करन वास्ते सचखंड तों ओ सतपुरुष ने अपनी समर्था दे करके संत सतगुरु जो ने इस जगत विच भेजे ने, उन्हां दे विच ओ सतपुरुष की पूरी समर्था हुंदी है, पूरी ताकत हुंदी है, ओ इस जीवात्मा नूं इस भ्रम चो कढ़न वास्ते आंदे ने। पर सब तो असल जल जो है जड़ी सानू समझ नहीं आंदी, असी संतां नूं की समझदे हां, असी उन्हां नूं एक देह समझ करके भुल जांदे हां। यही सब तो वड्डा भ्रम है कि संत की ने ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਲ ਔਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਖੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਸਮਰੱਥਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਕਲਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਜੋ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਕਰਾਏ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅਧੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਜੋ ਹੈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਹਰ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और असी दो चार तिरंगा नू लै करके नाम समझ के बैठे हाँ, ये साड़ी बहुत वड्डी भुल है। और जड़े अमृत दा बाटा छक करके ये समझ करके बैठे ने कि जड़िया पांच रायता सानू दे दितियां ने, सिर्फ उन्हा रायता नू पूरा करके उसके अलावा असी जो मर्जी कर दे रही है, पूरन सतगुरु सचखंड दे विच अख बंद करके बैठे ने ते ओ भरम दे विच बैठे ने। ओ पानी दा पानी रहेगा अगर असी उसनू अमृत बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सानू सतगुरां दे हर सूक्ष्म तरंग नू अमली जामा पहनाना पेगा। और अमली जामा किस तरीके नाल पहनाया जाएगा, अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी दे विच 24 घंटे हर पल हर घड़ी ए बार दा जो नाम है ना इस नू जपांगे। ए जपया किस तरह जाएगा, अपनी किरिया करके, जो किरिया असी मन दे अधीन हो करके मन दे विकारा दे हुक्म दे विच आ करके करदे आ ना, ओ सानू सतगुरु दी तरफ ख्याल पक्का करके हर पल हर घड़ी सिर्फ उतना ही जितना नू सानू हक दी हुक्म है। असी हक किनू कह रहे हैं 50% 100%। सात संगत जी असी 2 रुपए लगा करके 200 बनान लगे हुए आ, किसी जमाने दे विच 2-2-4 करन वास्ते अच्छा बिजनेसमैन कहंदे सी, पर अज उसनू मूर्ख कहंदे ने, अज अकलमंद किनू कहंदे ने जिहड़ा 200 बनांदा है। ते विचार करके देख लो ये 198 किस खाते च जाणगे, क्या सतगुरु अपने झोली च पा करके लै जाणगे, किस भरम च बैठे आ। जितना हक परिवार दे हिसाब नाल सानू चाहिदा है ना, यह हक लाल दी कमाई। क्या सतगुरां ने सानू हुक्म नहीं सी दिता जिसले नाम बख्शिया सीगा कि अपना हक खाना है, हक पराई नानका उस सूअर उस गाई, यानी किसे दा हक मार करके लै आए आ ना। हिंदू लई गां खान दे बराबर है और मुसलमान लई सूर, और ये गां और सूर असी रोज ही खा रहे हैं मार मार के। कदी विचार करके देखिया असी केड़े अंकार, असी मास छड़ दिता शराब छड़ दिती असी नाम लै लिया है, वो नाम लैण दे बाद कदी असी उन्हूं सुच्चा कीता है। असी इस मनुख दा मास और इसका रत पीण लगे है किस तरीके दे नाल, जिस तरह असी दूसरे का जदों हक मार के अपने घर टेबल दे उपर बैठ करके टाई लगा करके सारा परिवार रज करके खांदा है ना, दूसरे दे मारिया होया हक वो इंसान दा मास और खून दे पीण दे बराबर है। तो जो असी खान दा परहेज कर रहे हैं ना बहुत अच्छी गल है, कुछ कर्म नहीं बनणगे, पर जब तक असी रत पीवे मानसा, जब तक मनुख दा रक पीना असी बंद नहीं करांगे, पराया हक का मारना बंद नहीं करांगे ना, ये लफज कदे भी सार्थक नहीं होणगे। ये 5 तिरंगा ने सिर्फ 5, ते सतगुरु दे मुखार बिंचो हर पल हर घड़ी तिरंगा उत्पन्न हो करके लफज बन करके साडे कन्ना नाल टकरा रही ने, सानू अज तक सुनाई नहीं दिता। सो बार दा जाप की है, ये बार दे नाम दा जप अमली जामा पनाना हर पल हर घड़ी। और अंदर दा की भुगतान है, अंदर दा जप की है, अंदर दा जप किस तरह करना है, वो जो 5 तिरंगा 2 तिरंगा 1 तिरंग ये सतगुरु की अपनी मौज है, वो किसनू कितने शब्द देंदे ने, इन्हां तिरंगा नू अमली जामा पहनाना ये है अख बंद करके अंदर दा जाप करना। पर ये याद रखना अंदर दा जाप तां पूरा होएगा जदों बाहर दा जाप पूरा हो जाएगा, और अगर जब तक बाहर दा जाप पूरा नहीं ना होया ते ये कितना भी दौड़ भज कर लो, कितने भी उपराले कर लो, किनिया भी कसमां झूठियां खा लो, झूठे अमल करे, यानी कि अगर खुदा दा नाम लेना और नाम खुदाई का दिल अच्छे मुख ले, यानी कि सच्चे हिरदे दे नाल और सच्ची जबान दे नाल, अगर इस लफज सच्चे ने असी की कहंदे आ, हंकार दे विच गोते लगांदे आ, सतगुरां ने शब्द दिते ने बड़े ही सुच्चे ने, कोई शक नहीं सात संगत जी पूर्ण सच्चे और सुच्चे ने, पर अगर ये तां सार्थक होणगे जे सुची जबान दे नाल ना लिया जाएगा। असी इनू झूठी जबान दे नाल जप रहे हां, झूठे हिरदे नाल जप रहे हां, अंदर दे विच विशे विकारा दी अग बल रही है, और ऐसी अग लै करके और ऐसी जबान जिहड़ी हर पल हर घड़ी किसे दी निंदा करन तों बाज नहीं आंदी, झूठे कर्म करन तों बाज नहीं आंदी। ते विचार करो ये सच्चे शब्द सानू किथे लै जाणगे, वो नाम किथे लै जाएगा, सतगुरु की करणगे, वो ते आंदे ही ताले खोल देंदे ने, पर की करण ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਿਆਦੀ ਨੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਜਾਈਏ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਜਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਮਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਪਕਰਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਿਲਣ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਿਲਣ ਯਾਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਵਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ